सक्षम भी हाँ में सिर हिलाता है और कहता है, हाँ वैसे तो मैं ठीक ही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम कुछ ठीक नहीं हो। क्या बात है कीर्ति, मैं देख रहा हूँ कि जब से मेरी प्रणाली से शादी हुई है तुम मुझसे बात नहीं करती हो, और जब भी मैं यहाँ आता हूँ तुम ना ही मुझसे मिलाती हो और ना ही प्रणाली से मिलती हो। क्या मुझसे कोई गलती हुई है? कीर्ति का मन जो इस समय बेचैनी से भरा हुआ था वो जल्दी से अपना सर ना में हिलाती है और कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना कि अब तो आपका और हमारा रिश्ता जीजा साली का हो गया है और आप इस घर के दामाद भी हैं, इसलिए मैं आपसे थोड़ा दूर ही रहती हूँ कि कहीं अगर मुझसे कोई गलती हो गई और आपको मेरी कोई बात बुरी लग गई तो उसकी सज़ा आप प्रणाली दीदी को ना दें। सक्षम हंसते हुए कहता है, क्या कहा तुमने, मैं और सज़ा दूंगा, वो भी प्रणाली को? तुम्हें लगता है प्रणाली लेने वालों में से है? देखो कीर्ति, मैं नहीं जानता कि तुम अपने दिमाग में क्या सोच रही हो, लेकिन मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम मेरी बीवी की बहन होने से पहले मेरी दोस्त भी हो, इसीलिए तुम्हें मुझसे घबराने की या डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी कोई बात बुरी लग भी नहीं सकती है, तुम मुझसे पहले की तरह ही बात कर सकती हो, एकदम खुलकर और अपना दोस्त समझकर। वो आपकी दोस्त कैसे बन सकती है? आप रिश्ते में और उम्र में उससे बड़े हैं। सक्षम और कीर्ति एक साथ पलटकर देखते हैं तो प्रणाली उनके पास आते हुए कहती है। प्रणाली सक्षम की बाजू में अपनी बाहें फंसाते हुए कहती है, कीर्ति अपनी जीजाजी के लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ। कीर्ति एक हैरानी भरी नज़र से प्रणाली को देखती है और फिर हाँ में सिर हिलाते हुए चली जाती है। उसके जाते ही सक्षम हैरानी से कहता, तुमने उसे क्यों कहा कोल्ड ड्रिंक लाने के लिए? यहाँ इतने सारे नौकर हैं तो तुम्हें अपनी बहन को कहने की क्या ज़रूरत थी? प्रणाली ने भी घूरते हुए सक्षम और देखकर कहा, उसे ये बताने के लिए कि तुम उसके जीजा लगते हो और उसे तुम्हारे सामने हमेशा आदर और सम्मान से बात करनी चाहिए। और हाँ सक्षम, इस घर से अब तुम्हारा रिश्ता बदल चुका है, तो सबके साथ ये दोस्ती वाला रिश्ता निभाना बंद करो। सक्षम नामे सर हिलाता है और फिर आस्तिक की तरफ देखता है जो अपने कुछ बिजनेस पार्टनर के साथ खड़ा था। सक्षम भी उसके पास चला जाता है। तभी पार्टी के एंट्रेंस पर एक कार आकर खड़ी होती है जिसमें से रजत बाहर आता है। रजत पार्टी में दाखिल होता है और अरुणिमा को ढूंढने लगता है। उसके हाथों में इस वक्त फूलों का एक गुलदस्ता था। रजत पार्टी में खड़े होकर अरुणिमा को ढूंढ ही रहा था कि तभी वहां आस्तिक आकर कहता है, तुम्हें किसने इन्वाइट किया है? रजत की नज़रें तीखी हो जाती हैं और वो आस्तिक से कहता है, अरुणिमा ने, वरना आपको क्या लगता है राजा साहब, मैं बिना बुलाए आया हूँ। आस्तिक के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है और उसने रजत को देखते हुए कहा, वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर पता है कि तुम जब भी किसी फंक्शन में आए हो वहाँ पर हंगामा ज़रूर हुआ है। याद करो जब तुम प्रणाली की शादी में आए थे और उसके बाद अरुणिमा के जन्मदिन पर। आज क्या करने का इरादा है? रजत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वो आस्तिक को देखते हुए कहता है, आपको ऐसा क्यों लग रहा है राजा साहब कि मैं आपके घर में जब भी आता हूँ किसी इरादे से ही आता हूँ? खैर छोड़िए, अगर आपकी ऐसी सोच है तो मैं आपकी सोच नहीं बदल सकता हूँ, पर फिलहाल मैं यहाँ पर किसी इरादे से नहीं आया हूँ, बल्कि अरुणिमा ने मुझे इन्वाइट किया है। उसके बाद रजत अपने हाथों में लिया हुआ फूलों का गुलदस्ता आस्तिक की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, शादी की पहली सालगिरह मुबारक हो आपको राजा साहब। आस्तिक की नज़रें सख्त थीं। उसने रजत के हाथों से उस गुलदस्ते को तो लिया, लेकिन उसने फूलों के हिस्से को बेदर्दी से अपने हाथों के अंदर मरोड़ते हुए उस गुलदस्ते को उठाया और टेबल पर ऐसे फेंक दिया जैसे कि वो कोई कूड़ा है। गुलदस्ते में लगे हुए सुंदर सुंदर फूल अब टूटकर बिखर चुके थे और उसकी सजावट अब खराब हो चुकी थी। रजत और आस्तिक एक दूसरे को अपनी निगाहों से ही चैलेंजिंग लुक दे रहे थे कि तभी वहां अरुणिमा आती है और आस्तिक के बाजू में अपने हाथ को फंसाते हुए रजत को देखकर कहती है, अरे रजत तुम आ गए, मैं कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। रजत एक हल्की सी मुस्कान के साथ अरुणिमा को देखकर कहता है, अरे वो दिल्ली से फ्लाइट लेट थी ना, इसीलिए आने में टाइम लग गया था। अरुणिमा भी हल्की सी मुस्कान के साथ हाँ में सिर हिलाती है तो सक्षम हैरानी से पूछता है, दिल्ली? अरुणिमा ने कहा, हाँ दरअसल रजत की पोस्टिंग दिल्ली हो गई है, अचानक से ही दिल्ली शिफ्ट होना पड़ गया था। आप तो जानते हैं ना ये आर्मी वाले, इनकी पोस्टिंग लोग कहीं भी कर देते हैं। रजत अरुणिमा को देखकर कहता है, सॉरी अरुणिमा, मुझे अचानक से दिल्ली जाना पड़ गया था जिस वजह से मिश्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर आ गई थी, वरना मैं कभी भी मिश्री को अकेला नहीं छोड़ता। तुम जानती हो ना मिश्री मेरे लिए भी मेरी बहन जैसी ही है। अरुणिमा ने हंसते हुए कहा, कैसी बातें कर रहे हो रजत, तुमने इतने दिनों तक मिश्री का ख्याल रखा था वो क्या कम था? और वैसे भी मुझे पता है तुम हमें अकेला छोड़कर नहीं जा सकते थे। जब तक तुम थे तब तक मुझे मिश्री की फिक्र नहीं थी, लेकिन फिर तुम्हारे जाने के बाद मुझे मिश्री को अपने साथ रखना ही था ना। तभी पीछे एक बिजनेस पार्टनर आस्तिक को अपने पास आने के लिए कहता है। आस्तिक अरुणिमा का हाथ पकड़ते हुए रजत को देखकर कहता है, खाना खाकर जाना। रजत नामी सर हिलाता है, वो यहाँ पर खाना खाने नहीं आया था, वो तो बस अरुणिमा और मिश्री को देखने आया था कि वो दोनों सच में ठीक तो है ना। अरुणिमा की चेहरे की चमक बता रही थी फिलहाल उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक है। अब रजत को मिश्री से मिलना था। वो मिश्री को एक बार देख लेता, उससे बात कर लेता तो निश्चित होकर यहाँ से चला जाता। वो सिर्फ अरुणिमा और मिश्री के लिए ही दिल्ली से यहाँ आया था। रजत पूरी पार्टी में मिश्री को ढूंढ रहा था, तभी वो अचानक से चलते हुए किसी से टकरा जाता है और उसके हाथों से एक जूस का ग्लास नीचे छूटकर गिर जाता है। रजत हैरानी से सामने देखता है तो सामने कीर्ति होती है, जो गुस्से में रजत को घूरते हुए कहती है, अंधे हो क्या, दिखाई नहीं दे रहा है, तुमने सारा जूस गिरा दिया है। रजत जल्दी से नीचे झुककर जूस का खाली ग्लास उठाते हुए कहता है, आई एम सॉरी राजकुमारी जी, गलती से आपसे टकरा गया हूँ, मैं तो मिश्री को ढूंढ रहा था। कीर्ति गुस्से में रजत के हाथों से वो खाली ग्लास लेती है और कहती है, मिश्री कोई बर्ड है जो आसमान में नजर आएगी, उसे ढूंढना है तो जमीन पर ढूंढो और जमीन पर देख कर चलो। रजत की आंखें एकदम से बड़ी हो जाती हैं और कीर्ति वहां से पैर पटक के चली जाती है। रजत उसे जाता हुआ देखकर कहता है, सारे भाई बहन का एटीट्यूड लेवल एक जैसा ही है क्या।